के प्रेमी भक्ति सेवा अगर तुम मिलते रहे तो रखना निहार हो जाए। इसी तरह जीवन भर में ये कभी राम के सामने भूले नहीं, तो न तो मांग की और न कोई आलोचना की, न राय दी और न राम ने पूछा। तो क्या भरत का सेवक है ईश्वर से बड़ा हमारा सेवक और हमारा प्यार करने वाला कौन होगा, हमारे सेवक का सेवक। एक समय महाराज बोला गया मथुरा में था राक्षस लवनासुर, तो बड़ा उत्पाती था। तो राम दरबार में शिकायत आई, बात हुई तो भाई लवनासुर का दमन करना है। तो शत्रुघ्न के मन में आ गई एक दिन बाद, सेवा सबको मिलती है और हमको भी तो पूरे किया है, क्या कह दो। तो बोले सरकार दया तो हो आपकी, तो ये लवड़ा सो वाला काम दास कर दे। राम जी बोले हाँ हाँ अवश्य करो, लवड़ासुर का जमा करो वही राज्य पर। अब तो वज्रपात हो गया है शत्रुघ्न पर, यहाँ जी बोले और बोलते ही बज गया। राम से अलग होने का आदेश मिल गया, आप बोल सकते हैं। बड़ा पश्चाताप मन में किया कि जीवन भर कभी बोले नहीं और आज बोले तो फल मिल गया बोलते ही। तो दास भक्त जो होता है ना वो तो मालिक के सामने बकवास तो करता ही नहीं, मालिक को सलाह भी देनी होती है तो दूसरे के द्वारा जलवाना चाहता है, शरण देना चाहता। इसलिए वहां जब विभीषण आया तो सबको सम्मति दी, सबने बिना सम्मति अपना अपना कहना शुरू कर दिया। हनुमान जी बोले राम का निर्णय सुनने को पसंद हो, क्या ठीक निर्णय, ये तो कह दिया पर अपनी सम्मति होगी कह दास भक्त। तो दास भक्त जो है वो परिचर्या आज्ञा पालन करता है काय मनोवाक्य से, निरंतर वो आज्ञा पालन रूपी सेवा रूपी समुद्र में नग्न रहता है, दूसरा कोई उसके हेतु नहीं है। सेवा समुद्र में डूबे रहना ये सेवक का काम, पर वो सब प्रकार की सेवा अधिकार नहीं, सलाह देना भी सेवा है, आज्ञा देना भी सेवा है, पर सब प्रकार की सेवा का अधिकार नहीं, परिचर्या का। तो इसकी फिर जब इस भाव आगे बढ़ा तो स्वच्छता पर भाव, स्वच्छता में तो समता, समता में सलाह भी देता है। अब सुग्रीव में हनुमान के साथ है तो सुग्रीव उसको तो सखा कहते हैं, हनुमान को सखा नहीं कहा, कभी मेजर कहा, सात कहा, सुत कहा, पर सखा नहीं कहा। और हनुमान के कभी गले में बांध डाल के नहीं बैठे, तो कान के पास मुंह लगाकर मैं उसको लगाने दिया, मैं खुद लगाया। पर विभीषण और सुग्रीव इन दोनों को तो कान के पास मुंह करके बात करते, कान के पास मुंह का मुंह करा कर बात सुनते। सुदेव पहाड़ की झाँकी है बड़ी सुंदर, वहाँ विभीषण जी महाराज कान मुंह लगाए कर, और सुग्रीव जी से राय पूछते कहो क्या करें सखा, बोलो तुम्हारी क्या राय है। तो सखा राय भी देते हैं, सम्मति भी देते हैं, बिना पूछे देते हैं, और कहीं रास्ता ठीक न हो तो हाथ पकड़ के बैठा जोड़े से बचाओ, तुम धनिवार कुटुंब चलावा, ये सखा का धर्म है। यद्यपि सखा जीता है सखा के सुख संपादन में, वहां भी अपना सुख नहीं है। जैसे दास का काम केवल मालिक की सेवा है, ये उसका जीवन है, इसी प्रकार सखा का मित्र का काम केवल सखा का सुख है, वहां पर नहीं। तो वो कई बार ऐसा भी कर लेता है जो बड़ी सखा है, वो तो महाराज कुछ अजब है। ब्रज सखा और ब्रज के भगवान ये जो है ना ये खिलाड़ी, तो कभी कभी इनको ब्रज के सखा जरा गाली वाली दे तब उनको आनंद आता है, तब उन गाली के लिए सुने तो जरा आनंद ना आए, तो जरा दो चार गाली सुन ले तो ये सड़कला है, तो आपस नहीं गाली वाली देने में। सेवक सेवक किसी हनुमान जी महाराज ने कंधों पर राम लक्ष्मण को बैठा करके युद्ध किया, सब किया, पर राम के कंधे पर हनुमान जी बड़े बताइए श्री राधा भगवान श्याम सुंदर को घोड़ा बना के चढ़ गया भागवत उवाच भगवान कृष्ण श्री राधा नाम पराजित हार गए भगवान हार गए घोड़ हुई थी उनके भारे से घोड़ा बना भगवान अगर कहीं भगवान बने तो उनको हरावे थे भगवान भगवान बने रहे अपनी भगवत्ता के लिए बच रहे वहां पर तो वही कुछ में रहो फिर ब्रज में आकर के सखाओं के बीच में क्यों बचे रहोगे फिर अपना अपनी स्वभिमा में स्थित रहो वहां पर राजस्व के सुनते रहो दरबारी को प्यार पहने घर का क्या था ब्रज में आए हैं तो ब्रज के माँ बाप भी हैं उनके सखा भी हैं तो घोड़ा बने तो श्याम सुंदर क्या बने घोड़ा तो घोड़ा श्याम सुंदर को बनाया कंधे पर चढ़ गए सवार हो गए यहाँ से तो ले गए उनके मनुष्य बढ़कर श्रीरा मां ले गए तो ये अधिकार सख्यता में जो समता है ये समता सख्यता की दास रति में नहीं राजा जाओ तुम तो ये जो गोष्ठ लीला बड़ी मधुर लीला ये भगवान बहुत प्रकार सुनते ये सखाओं से जैसे सेवा अरे बोले लाला मार देगा ये तो मूर्ख है बच्चा है जिसको क्या होश है तो मारने का चारों तरफ चौकनी रहती है, इनमें बड़ा बुद्धि बड़ा चपल, नुमा तुम कब क्या कर बैठे, बुद्धि बुद्धि तो है नहीं अभी इसमें तो शासन इन्हें रखती है, संभाल रखती है, रक्षा करती है, स्नेह से पालती है और समय समय पर तर्जन तारण मारण भी करती है। खबरदार दिखाती है, खबरदार ऐसा किया तो ये फिर तमाम खबर ले ली जाएगी कि तेरी सारी शरारत निकाल दूंगी मैं, ऐसा अच्छी सीख देनी चाहिए ना बच्चे को, सीख न दे खाली लाल लाड़ी लाड़ कर तो बच्चा बिगड़ जा। तो बातें रखने सीख दी जाती, शिक्षा दी जाती है। तो कहते हैं कि दाम बंधन लीला, भागवत की दाम बंधन लीला ये वात्सल्य प्रेम रथी यशोदा मैया के वात्सल्य का एक समुज्वल दृष्टांत है। लाठी भी हाथ में ले ली, डराया भी, धमकाया भी, पकड़ने को पीछे दौड़ी भी, ऊखल से बांध भी लिया, कौन सी बात बात की रही, डराने और लाड बांधा क्यों, बोले कहीं गुस्से में आके जंगल को भाग गया तो अपने घर का काम भी करना है, कि मानेगा थोड़ी देर के बाद खाने को, तो बिना बनाया शेरों को तो कोई है नहीं, सबको भेज दिया बाहर, तो मान लेगा तो, और ये इतना चंचल है कि काम करने देगा नहीं, भाग जाएगा, गुस्से में आ गया आज खेती वजी हो, मैं तो कहीं जंगल में भाग गया तो मुश्किल, और पास बढ़ी रही तो कल घर का काम कौन करे, तो कर मुखल से बांध दे, बच्चा है वह बना पड़ा रहेगा। इस प्रकार से वात्सल्य भाव में, तो वात्सल्य में सख्य भी है, वात्सल्य में दास भी है, माँ जितनी सेवा करती है बच्चे की उतना दास नहीं करती, किसी भी दायित्व वाले को रखो टट्टी धोने का काम माँ की तरह से कोई करता ही नहीं, बीमार गंध आ रही है दुर्गंध, ऐसे बच्चे को हृदय के लगाकर माँ के समान कोई सेवक सेविका सोता ही, तो माँ में दास रहती है, माँ में अपने इंद्रियों का सारा दमन है बच्चे के हित के लिए, माँ सोई है बच्चा जारे की मौसी में मूछ में पड़ा, दूसरा कपड़ा है नहीं तो माँ मूछ में आ जाएगी गीले में, बच्चे को सूखे निकल गई, दमन इंद्रियों का दमन, मन का दमन, दास रति तो सलाह देना मित्रता वाली बात पूरी की पूरी, और वात्सल्य शासन भी करना, तो वात्सल्य में सख्य भी है, वात्सल्य में दास्य भी है, वात्सल्य में शांत भी है, पर यहाँ भी सर्वात्म निवेदन नहीं है, वात्सल्य में सर्वात्म निवेदन नहीं है, क्योंकि वात्सल्य में भी कुछ भाव है, मर्यादा है, कुछ दुराव है, कुछ सीमा है, कुछ संकोच संभ्रम और ढंका है, बच्चे के सामने माँ का व्यवहार और पति के सामने पत्नी का व्यवहार, माँ का बड़ा ऊंचा वात्सल्य होते हुए भी संकोच में शील में अंतर, तो कहते इसलिए जैसे हीन बुद्धि की सेवा करने का अधिकार सख्य को नहीं, दास्य को नहीं, शांत को नहीं, इसी प्रकार सर्वात्म निवेदन रूप सेवा करने का अधिकार वात्सल्य में नहीं, अतएव ये वात्सल्य प्रेम की अपेक्षा भी मधुर प्रेम जो है ये सबसे श्रेष्ठ है, मधुर रस की सेवा सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, और इस क्योंकि इस गुण में इस रस में भक्त को अबाध रूप से बिना किसी बाधा के, मन औरों में कहीं न कोई कोई न कोई बाधा वर्तमान है, धर्म की नीति की शील की मर्यादा की संकोच की, परंतु ये निर्बाध रूप से भगवान की सर्वविध सब प्रकार की सेवा का अधिकार मधुर में प्राप्त होता है, इस रस के समान किसी रस में सेवा नहीं होती, भगवान के साथ नाना प्रकार से विलास विहार आदि इस रस के सिवा मित्र नहीं होते, तो बहुत सा इसका वर्णन कुछ हो देते हैं, तो कहते हैं कि जो देह में और दैहिक पदार्थों में अहंता ममता भाव रखकर जो संसार में रहते हैं बहिर्मुख जीव, उनकी तो कोई बात ही नहीं, इसलिए प्रेम से सेवा करने वालों की जब आलोचना करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि किसी भी किसी अगर वचनीय सौभाग्य से जब सब सबके मूल स्वरूप परब्रह्म में मैंपन की धारणा हो जाती है तब वैश्विक सुख दुख से अतीत होकर सच्चिदानंद घन परब्रह्म में विलीन हो जाता है साधक। ये ब्रह्माद्वैत की बड़ी ऊंच अवस्था है। वो सब कुछ छोड़ करके भूलकर सच्चिदानंद स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान के लीला गुणादि श्रवण से आकृष्ट होकर भगवान को प्यार कर सकते हैं वे संसार की सारी ममता को भूल कर भगवान की ममता रखने जुड़ जाते हैं। वो तो अपनी अहंता भगवान में लीन कर लेते हैं और ये भगवान के ममता रखने जुड़ते हैं। तो जो भगवान के ममता अपन्न भक्त हैं ये निर्विशेषत्व को प्राप्त नहीं होते। ये तो कहते हैं निर्विशेषत्व को प्राप्त नहीं होते परंतु ममता के आनंद में अपने को खो देते और सेवा आनंद का आस्वादन करने का संयोग प्राप्त करते हैं। वो जो ब्रह्म में डूब जाते हैं वो सेवा आनंद से आनंद की उपलब्धि नहीं कर सकते, रूपानंद भी करते हैं। इसलिए भगवान में अहम बुद्धि रूप ब्रह्म भाव में किसी प्रकार का विषय संबंध वैश्विक सुख अज्ञान पीड़ा दुख न होने पर भी सच्चिदानंद का आस्वादन नहीं है। सच्चिदानंद रूप का है आस्वादन नहीं है, ब्रह्म भाव अनुभूति विहीन सच्चिदानंद स्वरूप का मात्र है। किंतु भगवान में ममता समर्पण करके शांत भाव से वैश्विक सुख दुखादि उनको जब छोड़ देता तो ये पीड़ा वहां पर है नहीं, पर भगवान में ममता रूप परमानंद का आस्वादन आरंभ हो जाता है शांत रस से ही। तो बहिर्मुख भाव की अपेक्षा बहुत ऊंचा ये ब्रह्म भाव, उसकी निदान का शांत भाव, पर शांत भाव में भगवान में ममता होने के कारण से भक्तों के शांत रस की दृष्टि से ये अधिक ऊंचा, और इससे तो इससे ऊंचा वो दास श्री कृष्ण की निष्ठा में दास उससे की सेवा प्राप्त होती है। और शांत में और दास्य में जो नजदीकपन नहीं है सामीप्य नहीं है वो सुख रूप में है। तो विषय में तृष्णा कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा ये तीनों सख में ये संकोच प्राप्त होती है। वास्तव्य में सख के जावतीय गुण विद्यमान होने पर हीन ज्ञान रूप सेवा अधिकार प्राप्त होता है और मधुर रस में शांत दास इत्यादि चतुर्विध जो रस है उनकी विषय तृष्णा विषय वैराग्य इंद्रिय दमन कृष्ण सेवा निष्ठा सेवा असंकोच और हीन ज्ञान ये सब रहने के साथ साथ और एक विशेष बात क्या है कि अपने सारे जीवन के द्वारा अपने सारे अंगों के द्वारा भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। परिपूर्ण रूप से कृष्ण सेवा का आस्वादन होता है। परिपूर्ण कृष्ण भक्ति एक प्रेमा होते एक प्रेमा रस कृष्ण कहते हैं कि परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति उस प्रेमा भक्ति से होती है। तो ये परिपूर्ण रूप से कृष्ण सेवानंद का आस्वादन होता है, इसीलिए इसका नाम मधुर रस, इसीलिए इसका नाम आज रस है, इसीलिए इसका नाम उज्ज्वल रस है। ये नाना प्रकार से इसका वर्णन आता है। तो और रसों में ये पूर्णता नहीं प्राप्त होती, इसलिए इसकी श्रृंगार रस में पूर्णता होती है। निज निज भावे सभी श्रेष्ठ करी मानी निज भावे को लेकिन सुख आस्वादन इनमें कोई भी किसी को नीचा नहीं कह रहे हैं, कहते हैं किसी को नीचा नहीं कह रहे हैं, न तो वो शांत भक्त ही वो शांत रस का ज्ञानी नीचा है और न शांत रस का भक्त नीचा है और न दास्य से वाले नीचे हैं। ये अपने अपने भावों से सभी श्रेष्ठ हैं और सभी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण के सुख का आस्वादन करते हैं। परंतु जब हम विचार करते हैं तारतम्य पर, तो ऐसा अनुमान होता है कि सब रस होते श्रृंगारे अधिक माधुरी, सब रसों की अपेक्षा श्रृंगार में माधुरी अधिक है, इसलिए इसका नाम मधुर रस है। तो कहते हैं कि जितने शास्त्रों में वचन मिलते हैं, पुराने ऐतिहासिक तारीखों में भगवान के चरित्र मिला के मिलते हैं, उनको विचार करने से यही निष्पन्न भी होता है कि मधुर रस में भगवान की सेवा सबसे अधिक होती है और सर्वविध होती है, और इसमें सेवानंदा स्वादन सबके अपेक्षा अधिक होता है। जो भगवान चाहे वही सेवा तैयार, किसी रस का बीच में बाधक होना इसमें नहीं। तो इस रस को जो अपने जीवन में उतारते हैं वे भगवान को प्राण बल्लभ, प्राण बल्लभ कह सकते हैं। तो दास रस में भगवान प्रभु भक्त दास है या दासी है, सुख रस में सजातीयता सापेक्ष है, समभावा सब होना चाहे सजातीयता होनी चाहिए, इसलिए इसलिए उस रस में सखा अथवा सखी मूर्ति का विशेषत्व है। वासुदेव रस में भगवान में पुत्र ज्ञान है, इस रस में भक्तगण अपने को एकायोग्य पिता माता इत्यादि मानते हैं। मधुर रस में केवल प्रेयसी भाव है, इसलिए यहाँ रूपी भाव को प्राप्त साधक ही इस रस में वो उतर सकता है, अन्य नहीं उतर सकते। तो सासा माधुर की छोरी मैदान मुखान भुज सीताम भगवी साक्षात मनमथ मनमथ, इत्यादि श्लोकों की व्याख्या जब होगी तब इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा कि भगवान, एक बात भी ध्यान में रखने की है कि भगवान के आनंद वर्धन करने के लिए ये उनके साथ विलास विहारादि के लिए चित्त में व्याकुलता होने पर भी उस व्याकुलता के साथ प्राकृत काम और प्राकृत कामाधिष्ठा से देवता मदन का कोई संबंध नहीं है। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि इस प्रेयसी भाव में विलास विहारादि के लिए चित्त व्याकुल होने पर उस व्याकुलता में इस प्राकृत काम और प्राकृत कामाधिष्ठा से देवता मदन का कोई भी संबंध नहीं। ये संबंध यदि आता है तो वो प्रेम नहीं, मधुर रस नहीं, वो नरकाग्नि का प्रेरक दंडनीय था। लेकिन तथापि कोटि-कोटि मन्मथ मन्मथ रूप श्री भगवान ही साक्षात मन्मथ रूप से उस भक्त के चित्त को मथन कर जाते, इसलिए उनके साथ वो सच्चिदानंदमयी रसमयी अशरीरा और सभी सेवा की वहाँ संभावना है। इसी संभावना को बताने वाला ये 32वें अध्याय का प्रारंभ होता है, जहाँ कासामी छोड़ी ये करते इसके बाद का विषय चलता है। इसमें अब बताते हैं, आगे बताएंगे कि रमणी भावापन्न ज्योति भावापन्न पत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन है। मने रंतुम मनश्चक्रे, ये रंतुम मनश्चक्रे रमन, तो रमन से जो पात्र कौन है, तो भगवान का जो स्वरूपानंद विपन्न रूप आनंद रसास्वादन है, इस आनंद रसास्वादन का अधिकार केवल श्री गोपांगनाओं को है, और वो क्यों है, उनका क्या स्वरूप है, ये आगे बने।